5 जुलाई दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, 5 मंत्रियों की छुट्टी, 19 नए मंत्री शामिल किए गए।
मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि।
प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में उतरने की खबरें, आपको मिलवाएंगे एक वाइन टेस्टर से।
कैसे रंग की है उससे कुछ पता लगता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर लाल वाइन है और बहुत डार्क है तो ये इतना सोच सकते हैं कि इसमें अच्छी क्वालिटी होगी।
और बात करेंगे विमल्डन की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज हुए विस्तार में प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 19 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही 5 मंत्रियों को हटा दिया गया है। एक फ्रांसीसी संसदीय जांच ने पिछले साल पेरिस में हुए हमलों को लेकर खुफिया सेवाओं पर विफलता का आरोप लगाया है। इस संसदीय जांच में सुधारों की मांग की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई एजेंसियों हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कौन क्या करता है। इस संसदीय जांच में कहा गया है कि इतनी सारी एजेंसियों को हटाकर एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाई जानी चाहिए जिसका मुख्य मकसद चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई हो। नवंबर में हुए हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा सेवाओं की जमकर आलोचना भी हुई थी। इस जांच के बारे में सेबेस्टियन पिएट्रा सेंटा का कहना था,
Rappelons que l'attaque du 13 novembre provient essentiellement de francophones belges.
13 नवंबर को हुए हमलों को याद किया जाए तो जिन लोगों ने हमले किए थे उन लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी और सभी के बारे में जानकारी थी। हमें नहीं पता कि इन पर रखी जा रही निगरानी क्यों खत्म कर दी गई। ये थे सेबेस्टियन पिएट्रा सेंटा के शब्द। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सीरिया के सशस्त्र विपक्षी समूह भी यातना देने के लिए वही तरीके अपना रहे हैं जो सरकार की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों एलेप्पो और इदलीब क्षेत्र पर केंद्रित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आम नागरिक डर के साए में रह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों में इस बात का डर है कि अगर वे इस्लामी बंदूकधारियों की आलोचना करते हैं तो उन्हें अगवा कर लिया जाएगा और वे कड़े सामाजिक नियम लागू कर देंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संसद में हुई बहस में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने का मुद्दा छाया रहा और इस बहस में शामिल लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉन क्लॉड यूंकर ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए प्रचार करने वाले नाइजल फराज और बोरिस जॉनसन को उदास नायक बताया। उनका कहना था कि वे योजना पर काम करने के बजाय नाव छोड़कर जा रहे हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद अपने नेता का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं। यहां यह देखा जा रहा है कि 5 उम्मीदवार एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का दावेदार बता रहे हैं। डेविड कैमरन ने पिछले महीने हुए जनमत संग्रह के नतीजों के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इनमें से माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ में रहने के लिए प्रचार करने वाली थेरेसा मे इस पद की प्रमुख दावेदार हैं। तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट में हुए आत्मघाती हमले के संबंध में प्रशासन ने 17 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में 45 लोग मारे गए थे। सरकारी मीडिया का कहना है कि इस सिलसिले में रूसी नागरिकों को पकड़ा गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में आज 19 नए चेहरों को शामिल किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से 3-3, महाराष्ट्र से 2, उत्तराखंड से 1, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक से 1 सांसद को मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रकाश जावड़ेकर को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आज शपथ लेने के बाद इन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में मोदी ने कहा कि नए मंत्री जश्न मनाने के बजाय संसद के मानसून सत्र के लिए तैयार रहें। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
मैं कृष्णा राज ईश्वर की शपथ लेती हूं कि
मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं मंत्रिमंडल का विस्तार और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की एक झलक।
मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति।
मई 2014 में सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का आज दूसरा विस्तार था, जिसमें 19 नए चेहरे शामिल किए गए। कल कुछ गिने चुने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि मंत्रिमंडल में रद्दोबदल नहीं बल्कि इसका विस्तार किया जा रहा है। सभी नए मंत्रियों को राज्य मंत्रालय सौंपा गया है। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि इन सभी का चुनाव उनकी क्षमता और शैली को देखकर किया गया है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि जाति, धर्म और दूसरे नजरियों के आधार पर ये नए चेहरे नहीं लाए गए हैं। लेकिन नए चेहरों पर एक नज़र डालने से ये महसूस होता है कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नज़र में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभर रही हैं। उन्हें भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।
मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा।
अनुप्रिया पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा के लिए एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। मंत्री बनने की खबर के बाद उन्होंने कहा,
मेरा ये मानना है कि हर राज्य के अपने कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं। उन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 2014 में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए थे। और आगे उत्तर प्रदेश की जो आज राजनीतिक परिस्थितियां कई वर्षों से बनी हुई हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गुंडा राज और भ्रष्टाचार जिस प्रकार यहां की राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है, उसका मुकाबला यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन कर सकता है। और मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूं कि ये गठबंधन 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए।
मंत्रिमंडल में 82 तक की संख्या हो सकती है। जाहिर है कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया भी गया है। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए अक्सर नए चेहरे युवा पीढ़ी के हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसमें दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो सके। जुबैर अहमद, BBC, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ से 3 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। यहाँ से 1 OBC, 1 दलित और 1 ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया गया है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय से पूछा कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किस रूपरेखा को ध्यान में रखा गया है।
ये मोदी जी का और अमित शाह का स्टैंप है। पहली बात तो ये उभर के आती है, मोदी जी का स्टैंप इसलिए है कि पहले मंत्री बनने के लिए 50 किस्म की लॉबीज वर्क किया करती थी और कोई लॉबी इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई कहता है कि इनको बनाओ, उनको बनाओ। अब ये सब कोई झंझट नहीं है, अब ये नॉमिनेशन है, ये जिसको चाहते हैं हैंडपिक करके वो मंत्री बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, साथ में 4 और राज्यों का चुनाव होने वाला है। भारत का समाज सामाजिक समीकरण एक राजनीतिक सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो मोदी जी और अमित शाह जी इस एक्सपेंशन के थ्रू उन्होंने सामाजिक समीकरण भी बखूबी करने की कोशिश की है। जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, में वहां से शुरू करूंगा। अमूमन परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। आज से नहीं, आदि काल से, जब से इस पार्टी का निर्माण हुआ है, ऐसी मान्यता रही है। इसीलिए जब तक ये ब्राह्मण बनिया कम्बिनेशन पे ही सिर्फ डिपेंड करते थे, ये बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन कल्याण सिंह के एक्सपेरिमेंट के बाद ये इनको सबक मिला कि जब तक बैकवर्ड वोट बैंक का एक महत्वपूर्ण धड़ा टूट के इनके पास, कास्ट हिंदूज के पास, यानी अपर कास्ट जो इनका वोट बैंक है, उसके साथ यदि नहीं जुड़ेगा तो विनिंग एज आ नहीं सकता है। इसीलिए इन्होंने अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया है। वैसे कोई खास राजनीतिक एक्सपीरियंस अनुप्रिया पटेल का नहीं है, लेकिन वो कुर्मी समाज से है और कुर्मी समाज बैकवर्ड्स में एक अच्छा खासा प्रभाव रखता है और उनकी तादाद भी खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है। और आपने देखा होगा नीतीश कुमार के हाथ पटखनी खाने के बाद ये इनको समझ में आया है। दूसरी बात आई है ब्राह्मणों पे। देखिए पिछले 2007 के चुनाव में मायावती ने साबित किया ये कि अच्छे खासा ब्राह्मणों को यदि टिकट दिया जाता है तो ब्राह्मण भी टूट के आ सकते हैं। और वहाँ एक नारा लगा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण आ भी गए मायावती के साथ। तो जिस तरह बैकवर्ड के टूटने से BJP को विनिंग एज मिलता है, अगर अपर कास्ट का ब्राह्मण टूट जाए और दलित से मिल जाए तो मायावती को विनिंग एज मिलता है। अब देखिए चंदौली एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चंदौली इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो पंडित कमलापति त्रिपाठी की सीट रही है और ब्राह्मणों का बहुत अच्छा प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में वहां से चंदौली से बाहर करता था, एक जमाना था। तो वहां से उन्होंने पांडे जी को पकड़ा। सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है।
आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व को बताते हुए विश्लेषण किया किस तरह वहां के लोगों को तरजीह दी गई है, लेकिन एक चीज आप नोट करेंगे कि 5 मंत्रियों को जिनको ड्रॉप किया गया है वो सभी जूनियर मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने हिम्मत नहीं दिखाई है अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को हटाने की कैबिनेट से।
ये बात भी सही है, लेकिन आपको इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा, मैंने कहा ये चुनावी वर्ष, हालांकि चुनाव अगले वर्ष होंगे लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। अब बिग फोर में किसको टच कर सकते हैं ये? अगर मान लीजिए होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, एक प्रयास एक लॉबी ये कर रही है कि इनको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। मेरी सूचना ये है कि राजनाथ जी उसके जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर राजनाथ सिंह जी को अभी छेड़ेंगे तो इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं निकलेगा।
और दूसरी बात, वो जो फॉर्मूला था उनका कि 75 साल से ऊपर के लोगों को नहीं जगह दी जाएगी और इसी बहाने आडवाणी और जोशी को बाहर रखा गया। नजमा हितुल्ला को हटाने की चर्चा थी, कलराज मिश्रा को हटाने की चर्चा थी, लेकिन उनको भी नहीं छुआ उन्होंने।
एक मुसलमान है और एक ब्राह्मण है, तो आप समझिए कि उसका असर पड़ता नहीं पड़ता ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने चुनाव को देखते ही ऐसा निर्णय किया कि अभी किसी को मत छेड़ो, जिसको बनाना है उसको बनाओ लेकिन किसी महत्वपूर्ण फेस को नहीं छेड़ो।
ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय। जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना, उत्तर प्रदेश में अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल लोकसभा में मिर्जापुर सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। लोकसभा चुनाव में अपना दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था और पार्टी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद से ही अनुप्रिया पटेल की अपनी पार्टी के नेताओं और अपनी माँ से विवाद शुरू हो गया। अनुप्रिया को मंत्री बनाए जाने पर भी अपना दल ने आपत्ति जताई है। एक रिपोर्ट के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ ही अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी और ऐसा हुआ भी, लेकिन अनुप्रिया के मंत्री बनते ही उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से सख्त आपत्ति जताई है। पार्टी के दूसरे सांसद हरिवंश सिंह ने BBC से बातचीत में कहा कि अनुप्रिया को मंत्री बनाने के बारे में भाजपा ने अपना दल से न तो कोई बात की और न ही पार्टी को कोई सूचना दी गई।
क्या बात कैसे हुई वो तो हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आज मिनिस्टर बनी है और हमारी पार्टी विरोध कर रही है। अनुप्रिया जी तो निष्कासित है हमारी पार्टी से, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राय बात भी नहीं की गई। अनुप्रिया जी की मम्मी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम दोनों को सिंबल उन्होंने दिया था, उनके सिग्नेचर से ही मिला था, तो उनको तो विश्वास भी नहीं लिया गया। वही तो उनका दुख है, उन्होंने कह दिया कि मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया गया BJP के द्वारा।
हरिवंश उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ सीट से अपना दल के सांसद है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी इस बारे में 7 तारीख को बैठक कर रही है और इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से भी की जाएगी। अपना दल NDA का हिस्सा है और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो इस गठबंधन में शामिल हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद से ही पार्टी या यूं कहें कि परिवार में आंतरिक कलह शुरू हो गया और आखिरकार अनुप्रिया पटेल की माँ और अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ी अनुप्रिया पटेल उस वक्त राजनीति में आईं जब अपना दल के संस्थापक और उनके पिता सोनेलाल पटेल की अचानक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार काशी प्रसाद यादव बताते हैं,
इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है, सोनेलाल पटेल की चूंकि अचानक मौत हुई थी तो उसके बाद कृष्णा पटेल को सपोर्ट करने वाला यहाँ कोई नहीं था और अनुप्रिया पटेल अपनी पढ़ाई मतलब वो ग्रेजुएशन करने के बाद ही वो यहाँ जुड़ गई और उस समय पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना दल का नेतृत्व संभाला था। अनुप्रिया की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जो समझ है, वो इन सबसे बेहतर है। यदि BJP अनुप्रिया पटेल पर दांव लगा रही है तो निश्चित तौर से BJP को उनमें संभावनाएं दिखती हैं। उनकी माँ भले विरोध जता रही तो 2017 का चुनाव बहुत नजदीक है, उस चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी कि जो कुर्मी वोट है वो अपना दल को कितना सपोर्ट कर रहा है।
इस बीच अपना दल के भाजपा में विलय की खबरें भी आ रही थीं, लेकिन अपना दल ने इससे साफ इनकार किया है। वहीं जानकारों का कहना है कि भाजपा शायद अनुप्रिया पटेल को ही अपना दल समझती है, इसीलिए वो पार्टी के अन्य नेताओं को विश्वास में नहीं लेती। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस वजह से भाजपा अनुप्रिया पटेल को इतनी तवज्जो दे रही है, क्या सिर्फ अनुप्रिया पटेल अपने समुदाय के मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर लाने में कामयाब हो पाएंगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
मोदी मंत्रिमंडल के जिन 5 राज्य मंत्रियों को हटाया गया है उनमें हैं रामशंकर कठेरिया, निहाल चंद, संवरलाल जाट, मनसुख भाई वासवा और M.K. कुंडूरिया। हमारे साथी पंकज प्रियदर्शी ने पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री रामचंद कठेरिया से पूछा कि आपको मंत्रिमंडल से क्यों हटाया गया।
संगठन में जाना, संगठन में काम करना है।
तो क्या आप मतलब पार्टी में आपको कोई पद मिल रहा है?
जरूर मिलेगा।
लेकिन फिलहाल क्या वजह बताई गई, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं उन पे गाज गिरने वाली है, तो क्या कहेंगे अपने कामकाज के बारे में?
नहीं, कामकाज मेरे को जो दिया गया था वो कर रहा था।
तो क्या मतलब वजह सिर्फ पार्टी में जाना है या और भी वजह मानते हैं आप?
नहीं, हमने तो पहले ही बहुत पहले से कह रहा हूँ, 2 महीना से मैं संगठन की बात कर रहा हूँ।
मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए आपको संगठन की ओर लाया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ, मतलब बिल्कुल संगठन में जाना।
अच्छा, ये बताइए कि कुछ बयानों को लेकर भी विवाद हुआ, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह रही हुई होगी?
ऐसा कोई बयान नहीं था जिसको लेकर।
नहीं, जैसे आपने शिक्षा के भगवाकरण की बात कही थी, वो तो आप मानते हैं, आपने कही थी?
देश के हित में। हाँ, मानता हूँ देश के हित में।
तो वो
विरोधी देश के हित में है, यदि विरोधी भगवाकरण बोलते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ।
नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये विवादित बयान था जब मोदी जी बात ये कर रहे थे? नहीं, हाल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई लोग बयान देते हैं जिससे इस पर असर पड़ता है, उन्होंने एक अप्रत्यक्ष रूप से ये बात मानी थी?
नहीं, हमने ये कहा था कि कुछ लोग, यदि हम देश के हित में कोई नीति बना रहे हैं और कोई भगवाकरण का आरोप लगाए तो वो लगाता रहे, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे।
और जो आपने आगरा में रैली में कहा था मुसलमानों के बारे में, उसका तो ऑडियो भी मौजूद है हम सबके पास।
उसमें मैंने जो बोला था वो एक सेंटेंस था, जो बोला था वो आपको ही पता है, मैंने ये कहा था दूसरा आरोप मरे उससे पहले वो चले जाए, जेल चले जाए, ये कहा था।
लेकिन आपने राक्षस शब्द का भी इस्तेमाल किया था?
नहीं, गलत है, आप वीडियो उठा के चेक करिए।
लेकिन आपको नहीं लगता कि वो भी गलत था जो आपने कहा?
नहीं, उसमें गलत नहीं था, क्या हो उससे पहले वो जेल चले जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही।
लेकिन उस रैली उस सभा में बदले की भी बात कही गई थी, मुसलमानों की ओर इशारा भी था।
नहीं, मेरा विषय नहीं था, मैंने ना बदला यूज किया था, ना मुसलमान शब्द यूज किया था, ना किसी संप्रदाय का नाम लिया था।
मंत्रिमंडल से हटाए गए रामचंद कठेरिया से बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आज इस तरह की खबरें आईं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका दे सकती है। 44 साल की प्रियंका पहले भी अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए कैंपेन मैनेजर का काम कर चुकी हैं। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि उन्हें पूरी तौर पर सक्रिय राजनीति में उतारने का फैसला लिया जा चुका है। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में वापसी करना बहुत जरूरी माना जा रहा है। कई प्रदेशों से सिकुड़ रही कांग्रेस को प्रियंका से पार्टी को नए वरदान की उम्मीद है। मैंने अमेठी से हाल ही में वापस आए BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से पूछा कि क्या प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में उतारना कांग्रेस के लिए ट्रंप का इक्का है?
देखिए, ये जो संकेत हैं ये पिछले काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं और इस पर काफ़ी कयास ज़्यादा हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पर बातें बहुत कम हुई हैं। खुद नेहरू गांधी परिवार की तरफ से न सोनिया ने, न प्रियंका ने, न राहुल गांधी ने ऐसी किसी बात का जिक्र किया है। और यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस के इंचार्ज बनाए गए हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी इस बात से साफ तौर से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, जो पार्टी फैसला लेगी वो आगे होगा। जो तमाम जगहों पर खबरें आई हैं इससे संबंधित वो ये रही हैं कि यूपी में कांग्रेस ने जो प्रशांत किशोर, जो चुनाव के स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, उनको अपॉइंट किया है और ऐसे लोगों का कहना है कि शायद उनकी जो रणनीति है उसमें प्रियंका गांधी का एक बड़ी भूमिका प्रियंका के लिए उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के तौर पर सभी विधानसभा सीटों के तौर पर वो देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी पिछले 10 साल से भी ज़्यादा से सिर्फ रायबरेली और अमेठी के लोकसभा चुनावों में अपनी माँ और अपने भाई के लिए प्रचार करती रही हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वो उससे ज़्यादा उनका राजनीति में तुरंत आ जाने का कोई इरादा नहीं है और उनके लिए परिवार उनका बहुत अहम है, उनके बच्चे हैं जिन पे वो ध्यान भी देना चाहती हैं। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है और विधानसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, जहाँ पर पिछले कई चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा है राहुल गांधी सोनिया के कैंपेन के बावजूद, अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो शायद वो करिश्मा, वो जो ग्लैमर है गांधी परिवार का, वो उतना, उसका रंग उतना ना दिख सके जितने कि शायद प्रशांत किशोर को या किसी और को उम्मीद हो सकती है।
लेकिन आप ये तो मानेंगे कि इसके बावजूद भी अगर प्रियंका गांधी पूरी तरह से उतरती हैं, कांग्रेस के लिए कोई मौका है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में?
अगर प्रियंका गांधी पूरी तरह से चुनाव में उतरती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम 50 से 70 सीटों पर वो सीधा असर डालेंगी, यानी 50 से 70 80 ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां पर कांग्रेस अभी तीसरे या चौथे स्थान के लिए लड़ाई लड़ती है, वहां कांग्रेस दो पर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनावों में उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण और कथित तौर पर धर्म के नाम पर जो वोट पड़े हैं और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन पर जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखा गया है, कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी को मेरी नज़र में राष्ट्रीय राजनीति पर उतारना एक साथ कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक शायद कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो बजाय उनको सीमित कर देना उत्तर प्रदेश की 400 प्लस सीटों पर।
वही सवाल उठता है कि क्या वो ये जोखिम लेंगे कि प्रियंका गांधी को वेस्ट करें उत्तर प्रदेश में और जिसका कोई सकारात्मक परिणाम ना निकले, सकारात्मक से मेरा मतलब है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में ना हो।
अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार करती हैं और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहती है तो फिर प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में, अगर कोई उनका ऐसा मंसूबा है या सोनिया गांधी या राहुल गांधी की नज़र में प्रियंका गांधी के लिए कोई प्लान है तो उसको बहुत बड़ा झटका हो लगेगा। और उसके बाद जो ऑपोजिशन है, जो विपक्षी दल है, जो अभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पीछे पड़े रहते हैं आमतौर से पिछले चुनावों की हार को देखते हुए, उनके सीधे निशाने पर प्रियंका आ सकती हैं।
और दूसरे कोण को भी देखिए, शीला दीक्षित को चेहरा बनाने की बात हो रही है, प्रियंका गांधी में दम है कि वो शीला दीक्षित जैसे, जिसे कहा जाए कि वो राजनीति के अपने सर्वश्रेष्ठ दिन देख चुकी हैं, उनको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर प्रोजेक्ट किया जाए और उनको नैया पार लगा पाएंगी?
हाँ, शीला दीक्षित ने, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति के अपने जो सबसे प्राइम टाइम था वो देख चुकी हैं, लेकिन उन्होंने आज जो बात की वो पिछले इतिहास की उन्होंने बात की है। कुछ जगहों पर रिपोर्टें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं उनके जो ससुर थे वो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शीला दीक्षित की उम्र के इस पड़ाव में प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शीला का प्रभाव उत्तर प्रदेश में डालने के लिए।
ये थे नितिन श्रीवास्तव और अब आज की विशेष रिपोर्ट। शराब बनाने का कारोबार कोई आसान काम नहीं। अंगूर के चुनाव से लेकर शराब बनाने तक ये एक बेहद पेचीदा प्रक्रिया है और इसके लिए बहुत हुनर की जरूरत होती है। आलोक चंद्रा एक वाइन कंसल्टेंट हैं और अंगूर पैदा करने से लेकर उससे शराब बनाने की पूरी प्रक्रिया के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वो शराब देखकर उसकी गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं। बेंगलोर में हमारे साथी इमरान कुरैशी ने उनसे मुलाकात की और ये रिपोर्ट भेजी।
आलोक चंद्रा अपनी बात की शुरुआत एक डिस्क्लेमर से करते हैं। वे कहते हैं कि वाइन बनाना आसान काम नहीं है। उनका मानना है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग वाइन से पैसा बना पाए हैं। चंद्रा एक वाइन कंसल्टेंट है जो अंगूर से लेकर वाइन चखने तक सलाह देते हैं। हमने उनसे पूछा कि जब वे वाइन चखते हैं तो क्या परखते हैं। चंद्रा कहते हैं,
कैसे रंग की है उससे कुछ पता लगता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर लाल वाइन है और बहुत डार्क है तो ये इतना सोच सकते हैं कि इसमें अच्छी क्वालिटी होगी, और अगर सफेद वाइन है जैसे कि बहुत पीली है और बहुत कम साल की वाइन है तो शायद उसमें कुछ खराबी होगी।
सामान्य तौर से जब कोई वाइन पीना शुरू करता है तो मीठी वाइन पसंद करता है और धीरे धीरे अलग अलग तरह की वाइन पसंद करने लगता है। वाइन की गुणवत्ता अंगूर की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अंगूर की पैदावार कहाँ हुई है और कैसे हुई है इस पर निर्भर करता है कि उसका स्वाद कैसा होगा। चंद्रा कहते हैं,
तरह तरह के ग्रेप्स, तरह तरह के हर एक ग्रेप से वाइन अलग रहती है और जहाँ वाइन बनती है उसमें भी फर्क पड़ जाता है कि भाई एक ही ग्रेप हो और आपने इधर वाइन बनाई या फ्रांस में वाइन बनाई या आपने अमेरिका में वाइन बनाई तो उसका टेस्ट और क्वालिटी अलग रहेगा।
वाइन को पीने के तरीके अलग अलग हैं। भारतीय व्यंजनों के मामले में वाइन अक्सर खाने से पहले ली जाती है, जबकि पश्चिमी खाना ठीक उल्टा है, यानी वाइन खाने के साथ ली जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाइन टेस्टिंग के लिए भारत में कोई कोर्स नहीं होता, जबकि पश्चिमी देशों में इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। कॉफ़ी और विस्की चखने के तरह वाइन चखने के लिए भी तंबाकू और टीका खाने से परहेज करना होता है। बहरहाल, आलोक चंद्रा को खुशी है कि भारत में वाइन का व्यापार बढ़ रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और अब नजर दौड़ाते हैं विंबलडन मैचों पर। विंबलडन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए, आदेश गुप्ता की पैनी नजर सभी मैचों पर, बताइए क्या है हाइलाइट्स?
जी रेहान, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर महिला वर्ग के मुकाबलों की बात की जाए तो आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं, जहां हर खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रही है। लेकिन अगर पुरुष वर्ग के मुकाबलों की बात की जाए तो आज चौथे दौर का एक मुकाबला था, 10वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य के टॉमस बर्डिच, जहाँ उन्होंने अपने ही हमवतन जीरी वेस्ली को हराया तो ज़रूर, लेकिन बेहद कड़ा संघर्ष करने के बाद बर्डिच ने को 5 सेटों में 4-6, 6-3, 7-6, 6-7, 6-3 से हराया। और उधर महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हुए, जहां शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स, 21वीं वरीयता हासिल रूस की अनस्तासिया पवलियुचेंकोवा से खेल रही है, और चौथी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर का सामना अपनी ही हमवतन 5वीं वरीयता हासिल सिमोना हालेप से था, जिसमें कर्बर 7-5, 7-6 से विजयी रही और सेमीफाइनल में भी पहुँच गई। और 8वीं वरीयता हासिल अमेरिका की वीनस विलियम्स कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेवेदोवा का सामना कर रही है। वीनस पहला सेट 7-6 से जीत चुकी हैं। आज ही महिला युगल वर्ग में सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स तीसरे दौर में छठी वरीयता हासिल चेक जोड़ी आंद्रिया हलवचकुआ और लूसी हर्डिका का सामना करेगी। और हालांकि जो लेडीज़ डबल्स हैं उनकी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन वहां पर मार्टिना नवरातिलोवा और उनकी जोड़ीदार ट्यूनिशिया की सेलिना सफार ने चेक गणराज्य की याना नोवोतना और हेलेना सुकोवा को 6-1, 6-2 से मात दी। दरअसल ये ऐसे मुकाबले होते हैं जहाँ अपने समय की कुछ दिग्गज खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रही होती हैं या दिखा रहे होते हैं। उधर पिछले दिनों हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीतने के बाद स्पेन में 6 देशों का हॉकी टूर्नामेंट खेलने वाली भारतीय हॉकी टीम आज स्वदेश वापस लौट आई। हाल ही में दिखाए गए खेल से संतुष्ट भारतीय टीम के कोच रोलेंड ऑर्टमेंस का अगला लक्ष्य अब रियो ओलंपिक्स है। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का पदक अब अतीत की बात है, अब टीम को ब्रेक की ज़रूरत है। हालांकि भारत स्पेन में 6 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहा था। उधर अब काफ़ी कुछ और खिलाड़ियों के रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद है, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के थ्रू जो रियो जाने के रास्ते खुले हैं, वहां भारत के 3 मुक्केबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं और 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि वहां पर किस तरह से भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन रहा है। हालांकि एक मुक्केबाज ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ शुरुआती मुकाबले जीते हैं, और अगर वो केवल एक मुकाबला और जीत जाते हैं तो फिर भारत का एक और मुक्केबाज रियो में जगह बना लेगा। इस पर हम अगले कार्यक्रम में थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया। आज हुए विस्तार में प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 19 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है। एक फ्रांसीसी संसदीय जांच ने पिछले साल पेरिस में हुए हमलों को लेकर खुफिया सेवाओं पर विफलता का आरोप लगाया है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सीरिया के सशस्त्र विपक्षी समूह भी यातना देने के लिए वही तरीके अपना रही है जो सरकार की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूरोपीय संसद में हुई बहस में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने का मुद्दा छाया रहा। तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट में हुए आत्मघाती हमले के संबंध में प्रशासन ने 17 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में हुए आत्मघाती बम हमलों की दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय निंदा कर रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।